दिन भर तारीख 25 मई दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कांगो के छात्र की दिल्ली में हत्या से अफ्रीकी देश नाराज, बिगड़ी बात बनाने में जुटा भारत का विदेश मंत्रालय, कहा नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को।
He explained to them that immediately on receipt of information on the incident, MEA got in touch with Delhi police, which acted.
केरल में पी विजयन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, दुनिया जहान में सुनिए मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत के बाद अफगान तालिबान की कमान हेप्तुल्ला अखुंजादा को।
मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत के बाद ये जो डिविजन हमने देखे तालिबान के अंदर, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाला है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। राजधानी दिल्ली में अफ्रीकी देश कांगो के एक छात्र की हत्या के मामले में चल रही जांच को लेकर अफ्रीकी देशों ने नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। इस बीच भारत में मौजूद अफ्रीकी राजदूत ने छात्र की हत्या के बाद कल होने वाले अफ्रीका डे समारोह को स्थगित करने को कहा है। अफगान तालिबान ने हेप्तुल्ला अखुंजादा को अपना नया नेता चुन लिया है, इसकी घोषणा तालिबान के प्रवक्ता ने की। पाकिस्तान में हुए अमरीकी ड्रोन हमलों में मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत हो गई थी। हेप्तुल्ला तालिबान न्याय प्रणाली के प्रमुख हैं और उपनेता रह चुके हैं। अब नए उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जिन पर काबुल में हुए बम धमाकों के आरोप हैं। ये पहली बार है जब तालिबान ने अपने नेता मुल्ला मंसूर की मौत की बात कबूल की हो। सीपीएम नेता पिनराई विजयन ने आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार में 19 विधायकों ने शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में लगभग सभी मंत्री युवा हैं और कई तो पहली बार चुने गए हैं। इनमें सीपीआई के 4 मंत्री भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वाम नेतृत्व ने बुजुर्ग विधायकों से युवाओं को रास्ता देने के लिए कहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन की पायलट नादिया सावचेनको रूस की जेल में 2 साल गुजारने के बाद आज कीव पहुंची। वे राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको के विमान में आई। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, यूक्रेन का हीरो आ गया। सावचेनको की रिहाई के बदले गिरफ्तार किए गए 2 रूसी सैनिकों को रिहा किया गया है। इन्हें पिछले साल पूर्वी यूक्रेन में गिरफ्तार किया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता का कहना था कि दोनों लोग रूस पहुंच चुके हैं। प्रवक्ता का कहना था कि सावचेनको को राष्ट्रपति पुतिन ने माफी दी है। रूस की अदालत ने सावचेनको को अवैध तौर पर रूसी सीमा को पार करने और फायरिंग करने का इशारा करने का दोषी पाया था, जिसमें 2 रूसी पत्रकारों की मौत हो गई थी। सावचेनको ने पत्रकारों को उनका मामला सामने लाने के लिए धन्यवाद किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरी रिहाई हुई। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, क्योंकि उसके बावजूद मैं जीवित हूं। पायलट नादिया सावचेनको के शब्द। इराक के सबसे अहम शिया मुस्लिम धार्मिक नेता ने सरकार समर्थक सेनाओं से अपील की है कि वे आम लोगों की रक्षा करें। यहां इस्लामिक स्टेट के कब्जे में रहे फलूजा पर दोबारा नियंत्रण पाने की सेना कोशिश कर रही है। धार्मिक नेता अयतुल्ला अल सिस्तानी का कहना है कि इस्लामिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और लड़ाई के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं मारा जाना चाहिए। फलूजा एक सुन्नी बहुल इलाका है, जहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अफ्रीकी देश कांगो के एक छात्र की दिल्ली में हुई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांगो के एक नागरिक ओलिवर की पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हत्या कर दी गई थी। अफ्रीकी देशों ने मामले की जांच में कोई प्रगति न होने को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की वचनबद्धता दोहराई है। ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को मिशन प्रमुखों से मिलकर भारत में अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर वचनबद्धता जताने को कहा है। छात्र की हत्या के बाद अफ्रीकी देशों के राजनयिक का कहना है कि भारत सरकार कल होने वाले अफ्रीका डे समारोह में वो शामिल नहीं होंगे। सुषमा स्वराज ने जहां इन राजनयिकों को आश्वासन दिया और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की बात कही है। सुनिए कि इस पूरे मामले में किस तरह से भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ। जुबैर अहमद से।
कांगो के एक छात्र की हत्या के बाद कल दिल्ली में अफ्रीकी देशों के राजनयिक संघ ने भारत सरकार को काफ़ी कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में हो रहे अफ्रीकी दिवस समारोह का बहिष्कार किया जा सकता है। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि अगर भारत में अफ्रीकी देशों के छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के इंतज़ाम सही से नहीं किए गए तो वो अपने देशों से छात्रों को भारत भेजना बंद कर देंगे। हर साल अफ्रीका से भारत में कई हज़ार छात्र पढ़ने आते हैं। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि अफ्रीकियों के साथ भारत में भेदभाव आम है और ये कि अफ्रीकी नागरिकों पर पिछले कुछ सालों में कई हमले किए गए हैं, लेकिन अब तक हमला करने वालों को एक केस में भी सज़ा नहीं मिली है। भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों की नाराज़गी को देखते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि अफ्रीकियों की सुरक्षा के लिए सभी पर्याप्त कदम फौरन उठाए जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
इमीडिएटली ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंसिडेंट एमईए गॉट इन टच विद दिल्ली पुलिस व्हिच एक्टेड प्रॉम्प्टली।
हमले की जानकारी के बारे में सूचना मिलने के फौरन बाद विदेश मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत सही कदम उठाए। दो संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तीसरा फरार है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंसाफ होगा और हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के शब्द। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश के बड़े शहरों में अफ्रीकी छात्रों को मिलने और उन्हें आश्वस्त करने का जिम्मा विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह को सौंपा है। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में 20 मई को कांगो के एक नागरिक को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था। अफ्रीकी देशों की इस चिट्ठी के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जब उन्हें घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार विदेशी नागरिकों के साथ इस तरह की घटनाएं दोबारा होने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगी, क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है। भारत में पिछले कुछ सालों में अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। यहाँ रह रहे अफ्रीकी नागरिक कहते हैं कि भारत में उनके खिलाफ नस्ली भेदभाव किया जाता है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
भारत में अफ्रीकी देशों के तमाम छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और अफ्रीकी देशों में भारतीय न सिर्फ काफ़ी तादाद में रहते हैं बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था के भी बड़े हिस्से बन चुके हैं। लेकिन भारत में अफ्रीकी लोगों के साथ नस्लीय हिंसा और भेदभाव की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। जुबैर अहमद, ये बताइए कि इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों देखने को मिल रही है?
पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई घटनाएँ घटी हैं और अलग अलग जो दूतावास हैं, जैसे नाइजीरिया के दूतावास ने पहले इस पर टिप्पणी की थी, उनके जब नागरिक पर हमला हुआ था, तो अलग अलग तो हुए हैं, लेकिन जो सारे अफ्रीकी देशों की जो यहाँ पे संघ है उसने इतनी कड़े शब्दों में ये चिट्ठी लिखी है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भारत सरकार ने फौरन नोटिस लिया। देखिए, शुक्रवार को ये हमला हुआ था, शुक्रवार से सोमवार मंगलवार तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मंगलवार को जब ये चिट्ठी भेजी गई तब कल विदेश मंत्रालय में इस पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी
और आज सरकार एक्टिव हो गई।
सरकार एक्टिव हो गई है। इसकी खास वजह यह है कि भारत और अफ्रीका के संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत बहुत ज़्यादा निवेश भारत ने किया है अफ्रीका में। $15 अरब 2014 तक भारत का वहाँ निवेश हो चुका था दक्षिण अफ्रीका में। $5 बिलियन तो भारत की कंपनियों ने निवेश किया हुआ है। नाइजीरिया में भी, तंजानिया में भारत का निवेश काफ़ी है। तो भारत चाहता है कि निवेश भारत का वहाँ पर बढ़े और चीन से उसको सीधा मुकाबला है अफ्रीका के देशों में।
जो चीन निवेश भी लगातार निवेश कर रहा है
50 बिलियन से ऊपर है, तो बहुत ऊपर है भारत से। और भारत अगर कम्पीट करना चाहे भी तो बहुत साल लगेंगे और भारत की यही कोशिश बहुत दिनों से, और इसीलिए भारत और अफ्रीका समिट भी होते हैं जिसमें भारत हर तरह से कोशिश करता है कि भारत की जो चीज़ें हैं आप खरीदो, यहाँ निवेश करने के जो रास्ते हमवार होते हैं।
तो स्टेक पर क्या लगा हुआ है भारत का?
यही है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई सजा किसी को नहीं मिली है, कन्विक्शन नहीं हुआ अभी तक, और फिर भारत सरकार क्या कर रही है उनको सुरक्षा पहुंचाने के लिए।
लेकिन इन पर कई तरह की बातें होती हैं कि भाई ये ड्रग्स लेते हैं, ये अवैध कामों में तमाम तरह के रैकेट चलाते हैं।
इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप भारतीय जेलों में संख्या देखेंगे तो नाइजीरिया के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। जब मैं मुंबई में पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि वहां के जो नागरिक हैं अक्सर वो अपने पासपोर्ट फेंक देते हैं और ये कहते हैं कि
डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उनको अरेस्ट भी कर लोगे तो कहां भेजोगे उनके, किस देश में भेजोगे? फिर कुछ ऐसे लोग हैं, और मैं उनसे मिला भी हूं मुंबई में, जो ड्रग्स का धंधा करते हैं और यहां कुछ मुश्किल में भी हैं। एक नाइजीरिया का मुझे मिला, वो उसने कहा कि 5 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया है, तो मैंने उसको अपने सामने खिलवाया उसको मैंने, तो ऐसे लोगों के एक गढ़ में गया जहां पे ड्रग्स वगैरह का धंधा कर रहे थे लोग। लेकिन जब मैं उनसे बातें करने गया तो वह अचानक से गायब हो गया वहां से।
तमाम बातों के बाद भारत का विदेश मंत्रालय क्या संदेश देना चाहता है?
जो परसेप्शन है इंडिया में कि अफ्रीकी ऐसे हैं, ये गलत है। कुछ लोग ज़रूर इसमें हैं, और यही संदेश भारत सरकार भी अफ्रीका को देना चाहती कि भारत के लोग ऐसे नहीं है कि सब एक तरह से कह ले कि रेस रिलेटेड अटैक्स हैं। उसमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वो भी अटैक करते हैं, वो उसका कोई रेस से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी संदेश भारत देना चाहती है। विदेश मंत्रालय में अफ्रीका डेस्क बहुत बड़ा डिवीज़न है। भारत सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है अफ्रीका से अपने संबंध बेहतर करने के लिए, क्योंकि भारत की छवि अफ्रीका में बहुत अच्छी है। इस तरह के जो कांड होते हैं उससे बिगड़ने का एक खतरा पैदा हो सकता है।
जुबैर अहमद विश्लेषण कर रहे थे कि दिल्ली में जो ये हाल ही में हत्या हुई है उसका मामला क्यों तूल पकड़ता जा रहा है और भारत का क्या कुछ स्टेक पर लगा हुआ है अफ्रीका में।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर। आज सीपीएम नेता पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तिरुवनंतपुरम में 18 विधायकों को उनके साथ शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में लगभग सभी मंत्री युवा हैं और कई तो पहली बार चुने हैं। इनमें सीपीआई के 4 मंत्री शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वाम नेतृत्व ने बुजुर्ग विधायकों से युवाओं को रास्ता देने के लिए कहा है। क्या है नए मुख्यमंत्री विजयन की चुनौतियां, सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में।
यह खुशों की आवाज आपको तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम से आ रही है जब सीपीएम के नेता पिनराई विजयन ने शपथ ली। हजारों की तादाद में लोग वाम मोर्चे की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए। लोगों की मौजूदगी से विजयन कुछ ज्यादा मुस्कुराए भी नहीं, हालांकि केरला में हर किसी को पता है कि विजयन कम मुस्कुराते हैं। लेकिन सवाल उसी से उठता है कि क्या वाम मोर्चा सरकार को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अब जो वो सत्ता में आ ही गई है। हमने यह सवाल तिरुवनंतपुरम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर के एन हरिलाल से पूछा।
गवर्नमेंट इज लाइकली टू फेस सीरियस चैलेंजेस मेनली ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रंट।
इस सरकार के सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति पर है। गल्फ देशों के तेल के संकट का केरला की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। केरला की अर्थव्यवस्था ज्यादातर मलयाली मनी ऑर्डर पर चलती है। इसके अलावा पिछले 5 साल में टैक्स वसूली भी बहुत कम थी। तिजोरी में ज्यादा पैसा नहीं है और कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं। ये थे प्रोफेसर के एन हरिलाल के शब्द। इसके साथ ही नई सरकार को राज्य की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए नए रास्ते भी ढूंढने होंगे, खासकर जब राज्य में निषेध नशाबंदी जारी हो गई है। हालांकि इससे ज्यादा असर नहीं पड़ा है, आर्थिक परिस्थिति पर आने वाले वर्षों में इसका भी असर पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेसर हरिलाल कहते हैं कि राजनीतिक चुनौतियों का भी इस सरकार को सामना करना होगा। राजनीतिक रूप से कांग्रेस की यूडीएफ अभी तो बुरे हाल में है, लेकिन अभी हुए चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी एक साथ लगता बल है। बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन इस सरकार को यह भी सामना करना पड़ेगा, खासकर सांप्रदायिक सौहार्द रखने के लिए। ये थे प्रोफेसर हरिलाल के शब्द। सीपीएम के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर एम ए बेबी भी प्रोफेसर हरिलाल की बात से सहमत हैं कि बीजेपी राज्य में कुछ ना कुछ समस्याएं बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा,
एक्चुअली व्हाट इज हैपेंड इज बीजेपी मेड क्लेम्स अबाउट,
हां बीजेपी बहुत कोशिश करेगी लेकिन वाम मोर्चा इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। ये थे प्रोफेसर एम ए बेबी के शब्द। मुख्यमंत्री विजयन के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही मजबूत आदमी हैं। ये भी कहा जाता है कि वह बहुत ही अच्छे प्रशासक हैं। इतने चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे उसको देखना पड़ेगा, लेकिन उनके सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके एक समय के गुरु V.S. अच्युतानंदन। अच्युतानंदन वाम मोर्चा के मुख्य चुनाव प्रचारक थे लेकिन उनकी उम्र के वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
26 तारीख यानी कि कल नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और जैसा कि हमने आपसे कल कहा था इस मौके पर हम आपको विशेष रिपोर्टें सुनवाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मोदी की विदेश नीति की, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और नेपाल के संदर्भ में। सुनाएंगे आपको विशेष रिपोर्ट लेकिन अगले कार्यक्रम में।
पाकिस्तान के टेररिज्म कम नहीं हुआ, पठानकोट सबसे बड़ी मिसाल है।
ये सारे मामले स्लोली चलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो इस नौयत के हैं।
इनका स्टाइल जो है वाकई फर्क है और उसमें जो मनमोहन सिंह जी के जमाने का स्टाइल था उससे हम काफी खिसक गए हैं, आगे बढ़ गए हैं।
तो ये थी जो रिपोर्ट हम आपको अगले कार्यक्रम में सुनवाने वाले हैं उसकी एक झलक। और अब आज का दुनिया जहान। दुनिया ने इस्लामी चरमपंथ का एक भयावह चेहरा अफगानिस्तान में तालिबान के रूप में देखा है। पिछले दिनों इसके नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी ड्रोन हमले में मौत हो गई। कुछ दिनों की उहापोह के बाद आज तालिबान ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया। तालिबान में मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत और नए नेता के चुनाव के बीच उपजी नई परिस्थितियों को टटोलने की कोशिश की है हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने इस बार की दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। बीते 2 दशकों से अफगानिस्तान में अपनी हरकतों के कारण दुनिया की नफरत बटोरते रहे तालिबान ने 1 साल के भीतर ही अपने दूसरे नेता को भी खो दिया है। पिछले साल अमीर उल मोमिन बने मुल्ला अख्तर मंसूर के मौत की पुष्टि अब तालिबान ने भी कर दी है।
تنوندونکو سلام وسم پام کړی تازه خبرته چم دا اوس مونږ لاسته ورسیده وسلوالو طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور د وجل کېدو خبر تایید کړ.
افغانستان میں طالبان کے امیر المومن بننے کی 1 سال کے بھیتر ہی مولا اختر منصور کی موت ہو گئی۔ پاک افغان سیما پر امریکی ڈرون حملے میں اختر منصور کو تب نشانہ بنایا گیا جب وہ کچھ طالبان لڑاکوں کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہے تھے۔ खबर ये भी है कि मंसूर ईरान से पाकिस्तान आए और अफगानिस्तान की ओर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अमरीका और अफगानिस्तान ने ये तो मानने में देर नहीं लगाई कि अख्तर मंसूर की मौत हो गई है लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है। BBC पश्तो सेवा से जुड़े सईद अनवर इसकी वजह बताते हैं।
अभी तक पाकिस्तान मुल्ला मंसूर के हालात की तस्दीक नहीं कर रहा, उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि वो मजीद आइसोलेट हो जाए और दूसरी जानिब ये है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के दहशत गर्दों के जो बड़े हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। इससे पहले उसामा बिन लादेन, उसके बाद मुल्ला उमर, अब तालिबान की सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर। तो इसलिए पाकिस्तान अभी तक तस्दीक करने से गुरेज कर रहा है।
जुलाई 2015 में जब मुल्ला उमर के मौत की खबर सार्वजनिक हुई तब दुनिया को पता चला कि अमरीका की नाक में दम कर देने वाले तालिबान की कमान बीते 2 सालों से मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथों में है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस के रिसर्च फेलो विशाल चंद्रा।
मुल्ला उमर के नाम पे मुल्ला अख्तर मंसूर ने तालिबान के जो अलग अलग गुट थे उनको एक कर रखा था और अगर मुल्ला अख्तर मंसूर के सामने जो चैलेंजेस थे उसको समझना होगा तो हमें शायद जुलाई 2015 में जाना होगा जब मुल्ला उमर के 2 साल पहले मरने की खबर सामने आई थी और तभी से मुल्ला अख्तर मंसूर कोशिश कर रहे थे सभी गुटों को साथ लाने की, पर कुछ गुट थे जो मुल्ला अख्तर मंसूर को अमीरुल मोमिनीन मानने से इनकार कर रहे थे। तालिबान के अंदर भी ट्राइब्स के आधार पर कहीं ना कहीं डिविजन्स रहे हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर
की मौत के बाद ये जो डिविजन हमने देखे तालिबान के अंदर, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। और इसकी भी संभावना है कि दो गुट उभर कर आए मोटे तौर पर, एक ऐसा गुट जो शांति वार्ता में हिस्सा ले, काबुल से बातचीत भी करे, और एक दूसरा गुट होगा जो इंसर्जेंसी को चलाता रहेगा।
अलग अलग गुटों में बटे दुनिया के सबसे खतरनाक चरमपंथियों के संगठन को मुल्ला अख्तर मंसूर ने अपने नियंत्रण में तो ले लिया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो अफगान सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर नहीं आए। जानकारों का मानना है कि यही हठ उनके मौत की वजह बना। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबे में वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई।
अफगान तालिबान के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में है और यहाँ पे इनकी फैमिलीज भी हैं, और यही तरीका है कि पाकिस्तान का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, असर है। पाकिस्तान ने अपना असर इस्तेमाल किया, लेकिन मुल्ला मंसूर और उनके साथी नहीं माने, उन्होंने अफगान सरकार से बातचीत नहीं की। हालांकि वो चार मुल्कों का जो ग्रुप है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमरीका, उन्होंने 5 दफा मीटिंग की, बड़ी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और आखिरी मीटिंग तो तकरीबन 10 दिन पहले इस्लामाबाद में हुई, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। तालिबान ने इनकार कर दिया, हत्ता कि अफगान सरकार ने भी इनकार कर दिया कि वो अभी तालिबान से बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान से कहेंगे कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अमेरिका की मदद से सत्ता पर काबिज हुई अफगानिस्तान सरकार लंबे समय से इस कोशिश में है कि तालिबान बातचीत के लिए तैयार हो और शांति प्रक्रिया शुरू की जाए। तालिबान इस सत्ता को मानने से इनकार करता है और अपनी सारी ताकत उसे अस्थिर करने में लगाता है। नतीजा आए दिन की हिंसा अफगानिस्तान के दामन पर जख्मों के निशान बनाती जा रही है। जानकार मानते हैं कि अख्तर मंसूर की मौत के बाद अफगान सरकार के लिए तालिबान से बातचीत और मुश्किल होगी। विशाल चंद्रा।
जो अंदर का डायनेमिक्स है तालिबान का, वो कहीं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत के बाद वो और भी बदलेगा। मेरा मानना है कि ऐसे में गुट उभरेंगे, अलग अलग गुट उभरेंगे तालिबान के अंदर, और इस बार पाकिस्तान के लिए शायद इतना आसान ना होगा एक लीडरशिप को इम्पोज करना तालिबान के ऊपर। अब यहाँ ये देखना होगा कि काबुल का क्या रवैया रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अशरफ घानी की 2014 से कोशिश है कि एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस हो, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, जहाँ पे बातचीत बढ़े आगे, कुछ समझौते हो, टेम्पररी सीज फायर हो, वायलेंस का जो लेवल है वो उसमें कुछ गिरावट आए, स्थिति थोड़ा सा स्थिर हो। मेरे ख्याल से रिकन्सिलिएशन प्रोसेस अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में चाहे बात कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की हो, चाहे बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को बदलने की हो, दोनों ही रुके हुए थे, और ऐसे में सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई है काबुल के लिए।
तालिबान ने हैबतुल्ला अखुनजादा को अपना नया अमीरुल मोमिन बनाया है। उनके साथ मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी को उनका नायब चुना गया है। मुल्ला याकूब पुराने मुखिया मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं और उनका नाम पहले भी तालिबान के मुखिया के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तालिबान का नया नेतृत्व क्या शांति की दिशा में कदम बढ़ाएगा? रहीमुल्ला यूसुफजई।
अफगान सरकार से बात करने को तैयार नहीं थे, शांति के हक नहीं थे, लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, इसलिए कि एक तो इनका जो अमीर है, लीडर है, मुल्ला मंसूर को मार दिया गया है, तो इन हालात में ये क्या बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये तीन जो लोग अभी टॉप के हैं तालिबान लीडर में, मुल्ला हैबतुल्ला अमीर, डिप्टी लीडर जो दो हैं, एक जो पुराने हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, और एक जो नए डिप्टी लीडर हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये सारे हार्ड लाइनर्स हैं। ये तो बिल्कुल जंग वाले लोग हैं, जंग करेंगे बल्कि बातचीत नहीं करेंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती कि नियर फ्यूचर में कोई अमन मुजाकरात होंगे। और अमेरिका ने कहा कि मुल्ला मंसूर ही बड़ी रुकावट थे, वो तालिबानों को रोक रहे थे कि वो अफगान सरकार से बात न करें। मेरे ख्याल में ये पूरी शूरा ने फैसला किया था, इसमें मुल्ला हैबतुल्ला और बाकी लोग शामिल थे।
तालिबान दुनिया में इस्लामी चरमपंथ के खूंखार चेहरे के रूप में सामने आया है। अफगानिस्तान, अमरीका, पाकिस्तान और तालिबान के नेता इस पर नियंत्रण की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये बार बार अपनी ही हदों को तोड़कर बाहर निकलता रहा है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
इस कार्यक्रम को यदि आप दोबारा सुनना चाहें तो सुबह विश्व भारती में हम इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण करेंगे। यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद और उससे जुड़े ग्रीस के कुछ आर्थिक सुधारों की शर्तों पर समझौता हो गया है। ग्रीस की संसद में इन शर्तों को मंजूरी मिलने के बाद कुछ विरोध तो हुआ, पर सरकार का कहना है कि अब स्थिति बेहतर नजर आ रही है। ग्रीस सरकार के पास धनराशि मिलने के बाद कर्जा चुकाने और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक मौका है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा वैभव से।
ब्रसेल्स में हुई यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक में बेलआउट कोष से प्रतिबंध हटा दिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों से 10.3 अरब यूरो यानी कि 11.5 अरब अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले ग्रीस संसद में आर्थिक सुधारों की कठोर शर्तों को मंजूरी मिल गई थी, जिनमें बजट में कटौती और टैक्स में इजाफे की बातें शामिल हैं। ब्रसेल्स में हुई बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेदरलैंड के वित्त मंत्री और यूरोपीय समूह के अध्यक्ष येरोन दिसेलब्लूएम ने आर्थिक मदद की घोषणा की। पिछली गर्मियों में ग्रीस द्वारा मान लिए गए आर्थिक सुधारों पर अब पूरी तरह से सहमति हो गई है। आर्थिक मदद पर पूर्ण समझौता हो गया है और ग्रीस की सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। अब संस्थानों के पास कुछ ही काम रहता है, जिसके बाद ये फैसले लागू हो जाएंगे। नेदरलैंड के वित्त मंत्री और यूरोपीय समूह के अध्यक्ष येरोन दिसेलब्लूएम के शब्द। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के यूरोपीय विभाग के निदेशक पॉल थॉमसन ने इस बात का स्वागत किया कि अब सभी देश ग्रीस के हालातों को मान्यता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम स्वागत करते हैं कि सभी सदस्य इस बात को मान्यता दे रही हैं कि ग्रीस का कर्ज मौजूदा हालात में लंबे समय तक नहीं काम करता। हम स्वागत करते हैं कि इस बात को मान्यता मिली कि ग्रीस को आर्थिक सहायता की जरूरत है, ताकि सुधारों को लागू करने के साथ साथ कर्ज भी उतारा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यूरोपीय विभाग के निदेशक पॉल थॉमसन के शब्द। ग्रीस में संसद के फैसला लेने के बाद कुछ लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सरकार का कहना है कि कर्जे की शर्तों को लेकर अब स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर है। ग्रीस के वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोतोस ने ब्रसेल्स में हुए समझौते का स्वागत करते हुए कहा,
It's an important moment for Greece after so much time.
काफी समय के बाद ग्रीस के लिए ये एक जरूरी वक्त है। अब न केवल कर्ज की रकम को लेकर, पर साथ ही इससे जुड़ी शर्तों के बारे में भी समझौता हो गया है। आर्थिक मदद और शर्तों की समीक्षा की गई है। आपको याद होगा कि गर्मियों में पहले कर्जे की समीक्षा हुई थी और फिर उस पर वाद विवाद किया गया था, पर अब इन दोनों बातों को मिला दिया गया है। ग्रीस के वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोतोस के शब्द। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने यह भी फैसला लिया कि ग्रीस के लिए कर्जे की शर्तों को भी आसान बनाया जाएगा, जिसमें कर्जे को लौटाने के समय को बढ़ाना और ब्याज दरों को कम रखना शामिल है। जुलाई में उधार की किश्त देने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज चुकाने के लिए ग्रीस को इस आर्थिक मदद की जरूरत है।
और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल खबरों की। रजत चांदना, क्या है आज खेल की दुनिया में क्या हो रहा है?
जी, IPL नो अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया है। दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आज सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एलिमिनेटर के राउंड में भिड़ेंगी। ये मैच फिरोशा कोटला मैदान में खेला जाएगा। आज होने वाले एलिमिनेटर मैच में जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं जीतने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात लायंस से भिड़ना होगा, जिसे जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। लीग मैचों के दौरान कोलकाता और हैदराबाद के बीच दोनों ही मैचों में हैदराबाद को हार मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वहीं चैंपियन बल्लेबाज और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को हुबली में 24 मई से होने वाली अंतर क्षेत्रीय टूर्नामेंट के लिए पश्चिम क्षेत्र की अंडर-16 टीम में शामिल किया गया है। वहां के कप्तान AM भोसले होंगे और ये टूर्नामेंट 6 जून तक चलेगा। उधर हॉकी में डिफेंडर सुशीला चानू ऑस्ट्रेलिया में 30 मई से शुरू होने वाली 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान चुनी गई हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत। और अब कार्यक्रम में से पहले हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मौसम में आ रहे जबरदस्त बदलाव से कई फसलें जानवरों और मानवों के लिए जहरीली होती जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में अफ्रीकी देश कांगो के एक छात्र की हत्या के मामले में चल रही जांच को लेकर अफ्रीकी देशों ने नाराजगी जाहिर की है। अफगान तालिबान ने हेपतुल्ला अखंडजादा को अपना नया नेता चुन लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।